તારીખ 20/11/1997, ડાયરીના બોલ નંબર 1788 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 153.
જીવ કો પરિભ્રમણ કી ચિંતના ઓર વેદના નહીં આતી હૈ ઓર નહીં આને સે ઉસકા ખેદ તો હોતા હૈ. એસી ऐसी इस प्रकार इस योग्यता वाले जीव की बात है कि चिंतना वेदना में आ नहीं सकते और नहीं आता है उसका खेद होता है कि क्यों नहीं आता है. अगर ये खेद यथार्थ है तो उदय में सावधानी रहता है. क्यों? कि उदय भाव में परिभ्रमण के कारण रूप परिणाम तो होते हैं. आपको खेद हुआ पर उदय भाव में आपको सावधानी नहीं रही तो ये खेद किस जाति का है? सही जाति का होता तो परिभ्रमण के कारण के वक्त उसके उसकी जागृति आ जानी चाहिए थी. जैसे नुकसान है तो नुकसान में सावधानी आती है. परिभ्रमण के विषय में चिंता नहीं होती है इसका खेद. और परिभ्रमण के कारण रूप परिणाम होवे उसमें कुछ सावधानी नहीं. ये दो बात का मेल कैसे बैठता है? मेल नहीं बैठता है. इसलिए ऐसी सावधानी और ऐसी जागृति नहीं है तो खेद निरर्थक गया. खेद का कोई सार्थकपना तो रहा नहीं. आपको खेद हुआ इसका सार्थकपना क्या है कि आपको सावधानी जागृति आई तो. जहां नुकसान होता है वहीं सावधानी नहीं है तो फिर उसका खेद किस काम का? एक दफे नहीं हो अलग बात है लेकिन ये तो हो ही रहा है बार 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 इसका होता है. इसका मतलब क्या हुआ? तो खेद का तो कोई मतलब रहा नहीं. हाँ, जागृति का दृष्टांत है कि वो परिणमन होते ही वो अनुसंधान हो जाए. कह रहे मैं तो परिभ्रमण का कारण तो ऐसे ही चलता है मेरा परिभ्रमण का. ऐसे ही मेरा परिभ्रमण का कारण मैंने किया. ऐसे ही मैं करता रहा तो वो उदय उदय के प्रसंग में वो पकड़ने में आएगा. परिभ्रमण का अनुसंधान होगा परिभ्रमण का विषय का तो फिर वेदना आने का कारण बनेगा. ये नहीं आती है इसका कारण वही है. हमको ये पॉइंट आउट वो करना है कि वेदना नहीं आती है उसका कारण वो है कि खेद व्यर्थ से जाता है सावधानी आती नहीं है. अगर जागृति आई और परिभ्रमण का विषय अनुसंधान हुआ तो वेदना आने का प्रकार बनेगा. यही प्रोसेस है. वेदना में आने का यही प्रोसेस है. वो प्रोसेस नहीं बनता है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा. इसकी डीपनेस वो है. जैसे आपकी एक समस्या है कि परिभ्रमण की वेदना नहीं हो रही है, कभी कभी खेद आता है. फिर भी नहीं आती है. वो तो नहीं आती है, क्या करे? बात तो समस्या वाली हो गई. परिस्थिति में तो समस्या पैदा हो गई. अब इसकी गहराई में जाते हैं तो इसका कारण वो है. कि खेद हुआ मतलब ऐसा खेद नहीं हुआ कि फिर परिभ्रमण के परिणाम होवे तो भी हमको मालूम ही नहीं पड़े, वो बात का अनुसंधान ही नहीं हुए, तो हमने खेद किस बात का किया? गलती हो सकती है एक दफे दो दफे, लेकिन हुआ ही करे तो इसका मतलब तो कोई रहता नहीं है कि हमने कोई खेद किया है वो तो सही है, यानी वो भी यथार्थ नहीं है। यथार्थ रूप से आता है तो ये जागृति आती है, ये सावधानी होती है, ये इसका बैकग्राउंड है आने का, वेदना आने का ये बैकग्राउंड है। और जागृति के कारण से चिंतना में प्रवेश नहीं होता, और जागृति के कारण से चिंतना में प्रवेश नहीं होता, और परिभ्रमण होने वाला है इसका खतरा भी दिखने में नहीं आया कि हमारे सिर पे ये तलवार लटक रही है परिभ्रमण की। जैसे लटकती हुई तलवार पड़ती है तो सिर छेद होता है, ऐसे परिभ्रमण की चिंतना हुए बिना मनुष्य भव मनुष्य आयु पूरा कर लिया फिर तो कोई जगह ही नहीं है, क्यों कि बहुभाग सामान्य स्तर के मनुष्य मनुष्य आयुष्य को भोगने के बाद पशु में चला जाता है। सामान्य आदमी जो तीव्र पाप करता है वो नरक में जाता है, तीव्र पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है, तो उसमें कोई दम नहीं है, वहां से भी एक इंद्रिय में जाना होगा क्योंकि वहां तो इतना भोग उपभोग है कि तीव्र रस के परिणाम में पाप तीव्र बन जाएंगे, तो एक भाव के बाद पशु गति आ जाएगी, बाकी सामान्य मनुष्य तो पशु गति में ही जाता है, उसको तो उतना कोई शुभ होता नहीं इतना अशुभ होता नहीं, और जो अपनत्व होता है संयोग में इसके कारण से वो तिर्यंच गति में पशु गति में चला जाता है। तो यहां तो काफी समझ के विवेक का ज्ञान खुला है, वहां तो वो बुद्धि चली जाएगी, पशु में तो संगनी पंचेंद्री में भी इतना प्रयोजन का विषय बुद्धि में नहीं रहता है, और संगनी होने में तो बातें खत्म हो गई, विचार शक्ति चली गई, और बहुभाग असंगनी हो जाता है इसलिए कि जब विचार करने का विवेक करने का मौका मिला कि मेरा हित कहाँ है मेरा अहित कहाँ है, उसको निग्लेक्ट किया है, उसका जो इस मौके का जो फायदा उठाना चाहिए वो आंख मिच ली, निग्लेक्ट कर दिया। उपेक्षा करने से जो साधन मन से विवेक से बुद्धि से जो विवेक करते हैं वो साधन के विषय में हम उपेक्षित रहे, उसका सदुपयोग करने में वो चीज कुदरत छीन लेती है अपने पास से। तो जो पशु होता है वो भी मन बिना का प्राणी हो जाता है, मन बिना का प्राणी होने से विचार शक्ति खत्म हो गई, ये बात हो जाती है। इसलिए ये सब बात थिंकिंग में लेना है, विचार में लेना है कि हम कितने खतरे में खड़े हैं। वो खतरा दिखता नहीं है इसलिए चिंता नहीं होती, ऐसा समझने योग्य है। संक्षेप में बात यह है कि खुद अजागृत दशा में परिभ्रमण के कारण रूप परिणाम को सेवन कर रहा है, वो बात लक्ष्य पर आई नहीं, जो लक्ष्य पर आनी चाहिए वो बात लक्ष्य पर आई नहीं, और समझ में आई हुई तो स्वलक्ष्य का अभाव है, स्वलक्ष्य से समझ में नहीं आई। सत्संग में तो बात चलती है, तो समझ में नहीं आई ऐसी नहीं है, समझ में आई लेकिन स्वलक्ष्य से समझ में नहीं आई। क्यों? कि नुकसान बर्दाश्त करने का जीव का स्वभाव नहीं, मामूली भी नुकसान कोई बर्दाश्त नहीं करता फालतू का। अपनी बस चले, अपना बस चले तो कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करने वाला है, परवशता से नुकसान सहन करना पड़े अलग बात है, ये तो स्व बस की बात है। इसलिए स्वलक्ष्य से ये बात समझ में अगर आती है तो जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये विषय 2-3 दिन पहले थोड़ा चला था, तो थोड़ा उसको गहराई में जा करके लिखा है। मतलब चिंतना नहीं आती है और दूसरे दूसरे उदय में हम चले जाते हैं, जो परिभ्रमण के कारण रूप परिणाम उसमें होते हैं, उसमें हमको बात विस्मृत हो जाती है, फिर स्मरण में आती है तो पता चलता है, अरे ये तो उदय में तो पता ही नहीं रहा।
जागृति का जो स्वरूप है वो स्मृति में रहना उसी समय में, ये जागृति का जो स्वरूप है इसमें जिस समय में उदय है उसी समय में स्मृति में रहना, या उससे और कुछ वियोगात्मक है? किस
नहीं, उसी वक्त वो लगता है कि ये तो परिभ्रमण का कारण ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, ये तो मेरा कंटिन्यू कैसे चलता है, मेरा खेद किस काम का फिर? तो उसको हर बात में उदय में जहाँ भी एकत्व तो होता ही है, परिभ्रमण का कारण होता है, अपनत्व होता है, उनको फील होने लगता है कि ये मैं इस प्रकार से परिभ्रमण कर रहा हूँ, इस प्रकार से मेरा परिभ्रमण तो होने वाला है, इसी कारण से होने वाला है, इसी कारण से होने वाला है, फीलिंग है वो डेवलप हो जाएगी। मतलब जिन लोगों को आया है वो इसी तरह से आया है, ऐसे लगातार महीना, 2 महीना 3 महीना चला तो जोर से आएगी वो चिंता, वेदना जोर से आएगी।
ये प्रयास सतत हो
रहा है। हाँ, और अगर ऐसी जागृति में मेरी नहीं रहेगी तो ये खतरा बहुत बड़ा है ना, ये खतरा है, नींद नहीं लेने देता, खतरा चीज ऐसे है नींद नहीं लेने देता। और हर जगह से निरसता भी आ जाएगी, जिस रस के कारण से हमारी जागृति नहीं रहती है वहां निरसता आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल साइड का विषय है। ना जितना मैं पकड़ सके इतना मैं, खतरो देखाय नहीं, देखाय એટલે આયા વગર રહેશે ને જાગૃતિ, ઓટોમેટિક ઉદાસીનતા આવશે, જાગૃતિ આવશે, બધું આવશે,
પરિણામ જે એના ખેંચાય છે
પરિભ્રમણ ના કારણ ને સેવે છે, જેસે કે किसी को नुकसान हुआ, रोने लग गया, फिर रोना बंद हो गया, वही नुकसान चालू कर दिया, फिर रोने लगा, फिर रोना बंद होने से वही नुकसान चालू कर दिया, रोने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। रोने का मतलब तो तब रहता है कि फिर नुकसान चालू नहीं करे, नहीं चालू नहीं रहे, या ना चालू रहे तो उसको उसका रोना तो कम से कम याद आए, यानी खेद को तो स्मरण में आ जाए कि मैं खेद किस बात का करता था, इस तरह से। यथार्थ भावना के साथ मक्कमता अविनाभावी है, दृढ़ता। मक्कमता मैंने दृढ़ता। अगर भावना यथार्थ होती है उसको अपनी भावना के साथ इसकी दृढ़ता भी साथ साथ होती है, ये भावना की विशेषता है। ऐसी विशेषता वाली भावना वो यथार्थ भावना है, क्योंकि यथार्थ भावना के साथ ऐसी दृढ़ता अभेद है। एक सिक्का के दो बाजू की तरह, सिक्का की दूसरी साइड साथ में आएगी, भावना स्वयं कोमल स्वभावी होने पर भी शिथिल नहीं है। भावना में एक विशेषता वो भी है कि वो कोमल है। भावना में कोमलता होने के बावजूद भी शिथिलता नहीं होती, ये भी इसकी विशिष्टता है। खास करके भावना के विशिष्टता के विषय में ये बात सब चली है। यथार्थ भावना की विशिष्टता क्या क्या है? दृढ़ता भी है, कोमलता भी है, और शिथिलता उसमें नहीं है। संवेग है, यानी बल है उसका। भावनावान जीव की जो मक्कमता होती है वो भी आश्चर्यकारी और अद्भुत होती है। कुछ भी हो जाए, यथार्थ भावना वाले तो भावना की मक्कमता में ही रहता है। भले ही वितराग नहीं हुआ है, अभी तो मुमुक्षुता का प्रथम चरण है, फिर भी उसकी मक्कमता आश्चर्यकारी और अद्भुत होती है। इसलिए इसका मोक्ष होने वाला है, यानी ये पूर्ण वितराग होने वाला है, क्योंकि नींव में वो बात पड़ी है कि कुछ भी हो जाए हम इस मार्ग को छोड़ने वाले नहीं हैं। बीज में वटवृक्ष की ताकत है। बीज कितना है? राई के दाना जितने होता है। वटवृक्ष का बीज कितना? कोई बड़ा नहीं होता है, जैसे कोई बड़ा मतीरा होता है, इतना कुछ बीज भी इतना नहीं होता है, खड़बूचा होता है, ऐसा कोई नहीं होता है। कलिंगर जितना कोई बीज होता है क्या? हाँ, बीज तो राई के दाना के जितना होता है, लेकिन वृक्ष कितना बड़ा होता है? इसमें से माइलों तक जाता है। बड़े बड़े वटवृक्ष तो इतने माइलों तक फैलता है। वो ताकत बीज में है। ऐसे भावना है वो मोक्ष का बीज भूत है। यथार्थ भावना, आत्मकल्याण की यथार्थ भावना, मोक्ष की यथार्थ भावना, ये मोक्ष की बीज है। तो उसमें ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है। और इसका प्रभाव कुदरत पर भी पड़ता है। भावना वाले के सामने कुदरत को झुकना पड़ता है, कुदरत झुकती है उसके सामने। जैसे किसी को मान लो वर्तमान में ज्ञानी का योग नहीं है, और कृपालु देव के वचनामृत से वो फीलिंग लेवल में आ गया कि अरे कृपालु देव चले गए, अगर ऐसे ज्ञानी होते तो इसके चरण में हम आत्मकल्याण कर लेते। वियोग की वेदना में अगर वो जीव सही रूप से आ जाता है, कुदरत क्या करती है? आयु पूरा होने के बाद कम से कम, अधिक से अधिक क्या होगा कि आयु तक शायद नहीं भी मिले योग। आयु पूरा होने के बाद तो कुदरत उसको वहीं ले जाती है, और वहां जाने में असंख्य योजन की सफर होती है। न कोई गाड़ी की जरूरत पड़ती है, न प्लेन की जरूरत पड़ती है, जाता है ऊपर, यानी तो स्वर्ग में होते हैं। उसको भी स्वर्ग में जाना ही होता है, भले इसके अनुचर के रूप में जाएगा, उतना पुण्य नहीं है, तो उसके पियोन के रूप में जाएगा, और उसको मंजूर है, लेकिन जाएगा वहां तो उसमें न गाड़ी की जरूर, न प्लेन की जरूर, न पेट्रोल की जरूर, न पैसा की जरूर, अरे न शरीर की भी जरूर, देह इधर छोड़ के जाएगा, शरीर इधर रह जाएगा और अकेला आत्मा चला जाएगा। देखो ये कुदरत की व्यवस्था है। कुदरत मैंने स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, गति क्रिया शक्ति तो खुद में ही है, गति हो जाती है, एक समय दो समय में वहां पहुंच जाता है। कितनी तेजी से जाता है? एक या दो समय लगता है, तीसरा समय नहीं लगता उसको, क्योंकि ऊपर जाता है ना, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, एक मोड़ लेगा तो दूसरा समय, बस दो समय में वहां पहुंच जाएगा।
मक्कमता हो गया मतलब स्वभाव का मान हो गया,
मक्कमता हो गया मैंने वैल्यूएशन हुई, उसका मूल्यांकन आ गया कि ये विश्व की सर्वोत्तम चीज है, सर्वोत्कृष्ट चीज है, किसी कीमत पे ये छोड़ नहीं सकते, ये हो गया, कुदरत को झुकना पड़ेगा। हाँ वो तो निश्चय तो होता ही है, मूल्यांकन में निश्चय तो होता ही है। इसलिए ये भावना का प्रभाव कुदरत पर पड़ता है, मैं तो एक सूत्र से बहुत सरस, कुदरते इलाही, इलाही माने क्या होता है नहीं समझ, उर्दू शब्द है, उर्दू भाषा ना शब्द है, कुदरती ईश्वर है, कुदरती परमात्मा है, जो परमात्मा में आनंद शक्ति है, एम आ जीव में ऊपर गयो तो इन्हें शक्ति थी गयो ने। मूल बात है, भले कुरान में लखेलू है पर मूल बात है तीर्थंकर देव ने। भाषा फेरियो, भाव नहीं फेरियो। नाना हरिभद्राचार्य दीदी जेटला आस्तिक दर्शनों छे एमां जे ओग संज्ञाए पण सर्वज्ञ ने स्वीकारे छे, एटले सर्वज्ञ ने वात ने स्वीकारे छे, एमां जो निष्काम बुद्धि छे तो ये सर्वज्ञ सुधी पहुंची जैसे, सकाम बुद्धि ईश्वर ने भजशे ये संसार में रखड़से, सकामता नु फल संसार, निष्कामता नु फल मोक्ष, डायरेक्ट बात लीधी छे मैं बधा दर्शनों में, एटले तो ने षड्दर्शन समुच्चय नामनो ग्रंथ लिखो छे ने, એમાં યોગ દ્રષ્ટિ સમુચ્ચય લખ્યો છે, એમ ષડદર્શન સમુચ્ચય ગ્રંથ પણ એમણે લખ્યો છે, સમુચ્ચયના એવા બીજા ઘણા ગ્રંથ એમણે લખ્યા લાગે છે, કારણ કે સમુચ્ચય ઉપર એમનું ઘણું વજન છે, સમુચ્ચય એટલે વાઇડલી થિંકિંગ કરવામાં આવે, તો બધી જગ્યાએ એનું એક પણ ક્યાં આવે છે, જેમ કે આ કુદરતે ઇલાહી શબ્દ છે, ભલે મોહમેડન સંપ્રદાયનો છે શું, પણ કુદરત કુદરત પરમાત્મા છે ને પરમાત્મામાં આનંદ શક્તિ છે, આવ્યું કે ન આવ્યું? જૈન દર્શનમાં એ વાત છે કે નહીં કે પરમાત્મામાં આનંદ શક્તિ છે અને એનું વિજ્ઞાન છે એ કુદરત છે, જળને જળેશ્વર કહીએ છીએ આપણે, એક પરમાણુ જળ છે એની અનંત શક્તિનો ઐશ્વર્ય એનામાં હોવાથી એને જળેશ્વર કહેવામાં આવે છે, બસ એનું નામ કુદરત છે, પરમાણુ પરમાણુની શક્તિથી કામ કરે છે, જીવ જીવની શક્તિથી કામ કરે છે, એની શક્તિનો સ્વીકાર એ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનનો વિષય છે, સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં શું આવ્યું કે એક પરમાણુમાં આનંદ શક્તિ છે, એક જીવમાં આનંદ શક્તિ છે, શક્તિનો સ્વીકાર, એમ જે વિશાળતાથી વિચારીને એની એક જગ્યાએ સમીક્ષા કરવી એનું નામ સમુચ્ચય. સમુચ્ચય, સમ એટલે સરખાપણું, ઉચ્ચય મને કહેવું, ઉચ્ચતું વક્ત ટુ સ્પીક. વિશેષ મેં ભાવના પ્રયોજન કી દ્રષ્ટિ સાધક હૈ, યથાર્થ ભાવના હોતી હૈ તો સ્વલક્ષ ઉત્પન્ન કરકે અપના પ્રયોજન કી દ્રષ્ટિ કો સાધ લેતી હૈ. ઓર પ્રયોજન કી દ્રષ્ટિ સાધ્ય હોને સે મુમુક્ષુતા વર્તમાન હોતી હૈ. ભાવના કી તો બહુ બાત આઈ હૈ અપને ઇસમે તો ડાયરી મેં, ભાવના કી બહુ તરહ તરહ કી બાત નિકલ ગઈ હૈ. મોક્ષ પ્રયોજન કી દ્રષ્ટિ, એ મોક્ષતા કે વિકાસ કા કોઈ ખાસ કારણ હો તો એ પ્રયોજન કી દ્રષ્ટિ હૈ. ખાસ કારણ તો વહી હૈ. ઓર મોક્ષ કા મોક્ષતા વર્ધમાન હોતી હૈ ઇસકા મતલબ ક્યા કે દર્શન મો કમ હોતા હૈ, इसका मतलब ये कि ज्ञान में निर्मलता आती है, इसका मतलब ये कि कषाय रसमंद होता है. दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में फर्क पड़ता है, उसी को एक शब्द में कहो तो पात्रता, मुमुक्षुता, आत्मार्थिता. भगवान भगवान डॉक्टर भगवान दास से विवेचन करी छे, मैं एक बात लीधी छे कि આત્માર્થી ના વિચારો શુષ્ક નથી હોતા. એક વાત એમણે એ સારી લક્ષ્ય, જ્યાં આત્માર્થિતા હોય છે એટલે આત્માર્થ સાધવાનું આત્મકલ્યાણનું પ્રયોજન હોય છે ત્યાં વૈચારિક શુષ્કતા નથી હોતી. શુષ્કતા નહીં હોવાને લીધે જે ફિલિંગ લેવલની વાતો છે એમાં એ ફિલિંગમાં આવે છે. અને એ જરૂરી છે આ ભૂમિકામાં, જેટલું ફિલિંગમાં આવવાનું થાય એટલું અનુભૂતિ પ્રધાન માર્ગની સમીપતા થવાનું કારણ છે. એટલે ભાવના ફિલિંગનો મુખ્ય વાત હોવાથી એ વિષય વધારે લેવાનું કારણ એ છે કે ભાવના પોતે જ ફિલિંગ સ્વરૂપ છે. હા, એ અમલ લીધું છે. હા, પ્રયોજનની જાગૃતિ એ જ પ્રયોજનની સફળતાની ચાવી છે. એમાં નાખજો સ્વાનુભૂતિ પ્રકાશમાં સૂત્ર છે. બીજું ભાવના પ્રયોજનની દ્રષ્ટિ સાધક છે એ પણ સૂત્ર જ છે. હા, ઘણી વિશિષ્ટતાઓ છે ભાવનામાં. પછી પછી જુદી જુદી વખતે જુદું જુદું થિંકિંગ ચાલ્યું અને નીકળ્યું છે, ઘણી વિશિષ્ટતાઓ છે. એટલે એક ન્યાય વિચારીએ તો ભાવના છે એ અનેક વિશિષ્ટતાઓનો ભંડાર છે કે જેમાં બીજભૂત પણ અનેક વિશિષ્ટતાઓ રહેલી છે. મુખ્ય અંગ છે, મુખ્ય અંગ હાર્ટ જ છે. શરીરનું મુખ્ય અંગ હાર્ટ છે, ભાવના છે એ હાર્ટ છે. એમ હૃદય કોમળ હોય છે, ભાવના કોમળ છે, છતાં આખા શરીરને શક્તિ લોહી પહોંચાડનાર હૃદય છે, પંપિંગ સ્ટેશન એ છે. આત્મકલ્યાણની યથાર્થ ભાવના અનેક સદગુણોના બીજભૂત છે, એ પણ એક સૂત્ર છે. આત્મકલ્યાણની યથાર્થ ભાવના અનેક સદગુણો પ્રગટ થવાની બીજભૂત છે. ભાવના પ્રયોજનની દ્રષ્ટિ સાધક છે, પ્રયોજનની દ્રષ્ટિ છે ને. પછી એમાં એના અનુસંધાનમાં બીજું સૂત્ર નાખવું હોય તો એમ નાખી શકાય કે મુમુક્ષુતાના વિકાસનો એકમાત્ર સાધન પ્રયોજનની દ્રષ્ટિ સાધ્ય થવી તે છે. ચાર પાંચ નીકળી ગયા. જાગૃતિ એ જ પ્રયોજનની સફળતાની ચાવી છે. 86માં લખેલું છે, 86માં, 10 વર્ષ પહેલા, 11 વર્ષ થઈ ગયા, 11 વર્ષ પહેલા લખાયેલું છે. ભાવનાનો વિષય ભાવનામાં લઈ આવે એવો છે. એ રીતે જોઈએ તો ભાવનાનો વિષય કેવો છે, ભાવનામાં ખેંચીને લઈ આવે એવો છે. जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा अपना निज रस से निज स्वभाव से प्रवर्तता हुआ ज्ञाता ज्ञेय संबंधी, ये इसकी शक्ति है, निज रस निज शक्ति ज्ञाता ज्ञेय, वो सपर प्रकाशक जो है वो अपनी शक्ति है। इस प्रकार के कारण से अनादि काल से नियो का परिणमन के लिए, नियो का परिणमन के लिए
ज्ञान तत्व को पर रूप मान लेता है, ज्ञान तत्व को भूल करके छोड़ करके जो भी जानने में आया, प्रतिभास में आया, उस रूप अपने को मान लेता है, उस रूप अपने को अंगीकार करता हुआ अज्ञानी होता हुआ भाव मरण करता है, नाश पामता है, अपनी अस्थि को भूलता है या निषेधता है, मैं नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी नहीं, मैं राग स्वरूपी, मैं देह स्वरूपी, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, जो ज्ञेय है उसको ही अपना स्वरूप मान लिया, ज्ञान तत्व को छोड़ दिया, ज्ञान मात्र को भूल गया।